மங்களம் காத்து மூகணி மங்களம் குஞ்ச குந்தாத்தியோ சேனு தர்மூத்து மங்களம். हम स्टार्ट करते हैं. आप लोगों का नमोकार मंत्र, चार मंगल, तीर्थंकर भगवान, देव दर्शन, जीव और अजीव और दिनचर्या, ये सारे चैप्टर हो गए हैं, राइट?
देव दर्शन,
दिनचर्या नहीं हुई है अभी.
दिनचर्या अभी नहीं हुआ है. ठीक है, ठीक है, ठीक है. हम जनरल डिस्कशन से स्टार्ट करेंगे. हम जस्ट डिस्कशन कर रहे हैं, तो टेक इट एज अ क्लास और प्लीज रिप्लाई कीजिएगा. ओके, टू स्टार्ट विद, सबसे पहले हमारे पांच परमेष्ठी होते हैं और हमने देव दर्शन में पढ़ा कि हमको प्रतिदिन जिन मंदिर जाना चाहिए, एंड अमेरिका में ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है डेली जिन मंदिर जाना. फिर भी एक जनरल क्वेश्चन कि हम जिनेंद्र देव के दर्शन क्यों करते हैं. कोई भी जिनेंद्र देव के दर्शन करना, नमोकार मंत्र पढ़ना, चार मंगल पाठ पढ़ना इत्यादि क्यों?
अपने स्वरूप का, वो भगवान का स्वरूप सोच करके अपना स्वरूप सोचना और ध्यान करना,
हमें उन जैसा बनना है.
जैसे उन्होंने प्राप्त की है वैसे हम भी अपना अनंत चतुष्टय प्रकट कर सके.
हाँ, बहुत बढ़िया. जैसी दिनेंद्र देव ने वितरागता प्राप्त करी है वैसे. चलिए, वितरागता, बहुत बढ़िया, आपने एकदम सही उत्तर दिया. तो जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से वितरागता प्राप्त हो जाएगी, राइट?
नहीं,
नहीं, नहीं.
दर्शन करने से नहीं होगी.
जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से वितरागता प्रकट नहीं होगी, तो फिर दर्शन करने का क्या मतलब फायदा?
तो नहीं,
आपने बोला जिनेंद्र. हाँ हाँ, बोलिए बोलिए.
हमें भी ऐसा भाव आए.
कैसा? वितरागता प्रकट करने का भाव हम सभी में आए, इसलिए हम जिनेंद्र देव के दर्शन करते हैं, करेक्ट?
हाँ जी.
ओके, पहले हम वितरागता पर डिस्कस करते हैं. हमारे भगवान कैसे होते हैं, भगवान किसे कहते हैं?
जो हिते हितोपदेशी हुए सर्वज्ञ,
जो हितो, जो वितरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हुए. हमारे साथ अभी प्रेजेंटली कितने लोग हैं कॉन्फ्रेंसिंग में, मुझे यदि आप लोग एक बार बताएंगे तो.
बिल्कुल, हाँ हाँ, हमारे साथ अभी टोटल 6 लोग हैं. मैं उनके सभी के नाम आपको बोलता हूँ. हमारे पास, हमारे साथ
हाँ
भाई, हमारे साथ है अमीशा, हमारे साथ है नियति बेन, और फिर हैं उषा बेन, प्रमोद अंकल, और मैं प्रतीक, और शोभना आंटी. इतने लोग हैं हमारे साथ.
तुषार भाई है,
तुषार भाई भी हैं,
और रतुल भाई आपके घर में से दूसरे कौन है?
अभी नहीं है कोई.
अच्छा, कुछ नहीं. और हीरज एंड हीना बेन,
वो नहीं है आज.
अच्छा, उनको मालूम है अभी है?
हाँ, मैंने उनको मेल कर दिया था.
अच्छा, मैं फोन लगा देती हूँ, एक मिनट आप चालू रखो अनुभव जी.
हाँ 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 हाँ, ठीक है. हाँ, तो अतुल भाई जी, आप बताएंगे भगवान किसे कहते हैं?
जो वितरागी होवे, सर्वज्ञ और हितोपदेशी.
अच्छा, वेरी गुड. जो वितरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी, वितरागी किसे कहते हैं? वितरागता से आप क्या समझते हैं, कोई भी बताएंगे.
जिनमें
वितराग, हाँ,
जिनमें ये चोकड़ी चली गई हुए अनंतर,
जिनमें
अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संचलन कषाय,
हाँ, जिनमें ये चार, ये जो कषाय हैं, ये चार चली गई हो, वो वितरागी होते हैं. ठीक है, ठीक है. मेरा सिंपल क्वेश्चन, हमारे भगवान सुखी है कि नहीं है?
सुखी.
प्रतीक जी, हमारे भगवान सुखी है कि नहीं है? है, सुखी है. ओके, क्यों है? क्योंकि उनके पास वितरागता है और विज्ञानता है, राइट?
बराबर बराबर,
राइट. तो विज्ञानता यानी कि सारे जगत को जानना, सारे जगत को जानना क्या सुखी होने का कारण है?
नहीं, नहीं है.
तो फिर भगवान तो सबको जानते हैं और वो सुखी हैं, तो सुखी होने का कारण तो होगा,
वो अपने को जानते हैं और अपने को जानते हैं,
हाँ
अपने ही अंदर वो झलकता है इसके लिए, उसको
अच्छा, तो
जानते हैं
भगवान फिर अपने को ही जानते, सिर्फ जगत को जानने की जरूरत क्या थी? हम उनको सर्वज्ञ क्यों बोलते हैं सिर्फ? यदि अपने को जानने सिर्फ से काम हो जाता, जगत को जानने की जरूरत नहीं होती, तो भगवान फिर सर्वज्ञ क्यों कहलाते? क्यों जानते हैं वो सबको?
वो ज्ञान की ऐसी योग्यता है कि वो केवल केवल ज्ञान की ऐसी योग्यता है कि बाकी सब पदार्थ ऐसे ही लग जाते हैं।
बराबर। भगवान कभी किसी परद्रव्य को जानने जाते नहीं है, वो स्वयं ही भी उनके ज्ञान में झलक जाते हैं। ठीक है, बराबर। तो ठीक है, जानना तो समझा कि भगवान ने एक बार पूर्ण ज्ञान ले लिया है, अपने आप को जान लिया है, तो अपने आप उनकी ज्ञान में सब कुछ झलक रहे हैं, तो ये सहज हो रहा है। तो वीतरागी बनने की क्या जरूरत है उसके लिए? मात्र सर्वज्ञ बनने से ही काम हो जाए?
क्योंकि राग द्वेष है तो फिर जानेंगे सब कुछ, तो किसी के प्रति राग होगा, किसी के प्रति द्वेष होगा, तो वो पॉसिबल वो नहीं हो सकता है। अगर वीतरागी है तो ही सर्वज्ञ हो सकते हैं।
बराबर। देखिए, जो हमारे यहाँ अन्य मत चलते हैं, अन्य धर्म चलते हैं, उन सब ने अपने भगवानों को तो सर्वज्ञ तो बताया, किसी ने वीतरागी नहीं बताया। अब जस्ट सोचिए कि यदि हमारे ज्ञान में पूरा सब कुछ जानने में आ रहा है, तो इस विश्व में इतनी सारी चीजें हो रही हैं, कहीं पर स्लॉटर हाउसेस हैं, कहीं पर कुछ और चल रहा है, कहीं हमारे पूर्व जन्म के माता पिता किसी गंदी गति में है, दुश्मन कहीं अच्छी गति में होंगे, तो ये सब जानकर इस जीव को राग द्वेष उत्पन्न होगा और ये सबसे दुखी इंसान हो जाएगा। यदि आप सर्वज्ञ और आपके अंदर वीतरागता नहीं है, तो आप इस दुनिया के सबसे दुखी इंसान हो जाते हैं। इसके लिए यदि वीतरागता ना हो तो सर्वज्ञपना दुख का कारण है, इसलिए हमारे भगवान वीतरागी होते हैं। और जब वो सबको जानते हैं और उनके अंदर राग द्वेष भी नहीं है, इसलिए वे सुखी कहलाते हैं। ठीक है, तो मेरा प्रश्न था कि हम भगवान को पूछते हैं तो क्या हम भी वीतरागी सर्वज्ञ हो जाएंगे उनके दर्शन करने से, देव दर्शन करने से?
दर्शन मात्र से नहीं,
भगवान के
दर्शन
तो
मात्र
फिर
से
क्या
नहीं,
करना पड़ेगा
उनके जैसा बनने के लिए?
तो फिर
कि अपना स्वरूप का स्वरूप सोचना चाहिए और स्वरूप में ध्यान करना चाहिए, तो ही हम सुखी हो सकता है।
ओके, यानी कि भगवान के दर्शन मात्र से कुछ नहीं होता, हमको यदि उनके जैसा बनना है तो हमें अपने स्वरूप का विचार करना चाहिए। तो फिर वही मेरा प्रश्न है ना, फिर भगवान के दर्शन क्यों? अपने स्वरूप का विचार करें ना, भगवान के दर्शन करने की आवश्यकता क्या है?
प्रेरणा मिले
हमें जब तक
भगवान,
हमें जब तक समय दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक ये परद्रव्य देव गुरु धर्म है वो निमित्त रूप से होते हैं तो ही होता है। एक बार वो सम्यक दर्शन प्राप्ति हो जाए और फिर छठे सातवें,
तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए तत्पश्चात भगवान के दर्शन नहीं करने चाहिए?
नहीं, नहीं, नहीं करने तो चाहिए वो तो सहज ही हो जाता है, क्योंकि उनको देखते तो सहज ही हो जाता है उसमें।
वही सहज क्यों? ये सहज होना, ये आपने बहुत सही बात कही, आप थोड़ा और समझेंगे सहज क्यों होता है?
क्योंकि वो हमारा जो अंतरंग का जो रूप है वो हमें उनमें दिखाई देता है, इसके लिए वो सहज हो जाता है।
देखिए देखिए देखिए, हमारे भगवान का वीतरागी सर्वज्ञ और एक और कैरेक्टरिस्टिक है हितोपदेशी, राइट? भगवान हितोपदेशी, तुषार जी भगवान को हितोपदेशी क्यों कहते हैं?
क्योंकि उनकी वाणी से सबका हित होता है, जो सच्चा सुख है उनकी मोक्ष की उसकी से प्राप्ति
हो। हितोपदेशी का मतलब क्या होता है?
हित
जो हमारे हित का उपदेश है, यानी भगवान अपनी दिव्य ध्वनि में वही मार्ग बताते हैं जो कि सुख का मार्ग हो, और कोई मार्ग नहीं बताते, राइट? भगवान की जिन वाणी सिर्फ सुख के मार्ग का प्रतिपादन करती है और कुछ भी नहीं करती है। ठीक है, तो हमारे भगवान क्या है? हितोपदेशी है। अब जस्ट सोचिए कि यदि भगवान नहीं होते और उनकी दिव्य ध्वनि नहीं होती, तो क्या हमें ये पता पड़ जाता कि सुखी कैसे हुआ जाता है? यदि भगवान खुद अपना कल्याण करके चले जाते और हमें दिव्य ध्वनि जिनवाणी देकर नहीं जाते, तो क्या हम कभी जान पाते
नहीं।
ये दुख का मार्ग क्या है?
नहीं।
नहीं, भगवान के दर्शन हम एक तो इसलिए करते हैं कि भगवान वीतरागी हैं, तो वो हमें याद दिलाते कि हाँ मुझे भी वीतरागी होना है। दूसरी बात ये कि जिन्होंने वीतराग दशा प्राप्त कर, जिन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, जिनको पता पड़ा है कि हाँ जो भगवान ने मार्ग बताया उसमें सच्ची में सुख है, जैसे आपने बोला सम्यक दृष्टि, तो हम अभी भगवान के दर्शन इसलिए करते हैं कि भगवान आपने मुझे मेरे हित का मार्ग बताया, और जब हम इस मार्ग में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो स्वयं ही भगवान की महिमा आएगी कि अहो भगवान धन्य हो आप कि आपने अपना जो महान रहस्य था वो मुझे बताया और मुझे सुखी होने का अवसर दिया। तो स्वयं ही भगवान के दर्शन करने के भाव आते हैं, तो भगवान के दर्शन करने जाना नहीं पड़ता, स्वयं एव ही जब अपने हितकारक देव दिखते हैं तो उनके सामने अपने उनको दर्शन करने के नमन करने के भाव हो जाते हैं। तो नमोकार मंत्र चार मंगल जब तक हमको पढ़ना पड़े कि चलो अभी मंदिर आ गए अब नमोकार मंत्र पढ़ना है, अब चतारी मंगल पाठ पढ़ना है, तब तक भगवान की सच्ची भक्ति नहीं कहलाती। भगवान को देखकर यदि बहुमान आए कि अहो भगवान आपने, अच्छा इस संसार में दुख है कि नहीं है? उषा बहन जी आप बताएंगी संसार में दुख है कि नहीं है? संसार में दुख है कि नहीं?
उषा बहन निकल गई होंगी,
आवाज क्लियर आ रही है ना?
हाँ उषा बहन, वो म्यूट कर रही है। ओके ओके ओके, हाँ हाँ उसे हाँ। भी बोलिए, आप म्यूट पे थी। हाँ हेलो,
हाँ हेलो, इस संसार में दुख है कि नहीं? और कोई
संसार दुख से ही भरा है,
बहुत दुख
है संसार में, बहुत दुख है। प्लीज एक दो दुख के प्रकार बता दीजिए, आपको क्या दुख है?
इच्छाओं का दुख है, इच्छा
इच्छाओं का दुख, जैसे 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 देखिए हम लोगों ने इतने सारे प्रवचन सुन लिए हैं, शास्त्र पढ़ लिए, तो हमको शास्त्र के शब्द याद हो गए कि बहुत अनुकूलताएं नहीं है, आकुलता बहुत है, इच्छाएं बहुत है। आप ये बताइए आपको क्या दुख है अपनी भाषा में, शास्त्र की भाषा में नहीं।
मतलब सुख कहाँ से नहीं मिला, एक एक्टिविटी से दूसरे, अभी आपके
हाँ,
प्रवचन सुनेंगे।
आप ये बताइए, हाँ
जन्म मृत्यु जरा व्याधि,
अरे लेकिन ना तो हमें जन्म के दुख याद है अभी, उसको तो कितने साल हो गए, मरण अभी तक आया नहीं, तो उसके दुख का हमें कोई आइडिया नहीं है। बताइए बाकी के दुख कौन से हैं, अभी कौन सा दुख लग रहा है आपको?
तक का दुख लग रहा है, एक काम पूरा नहीं होता फिर दूसरे
दूसरी
आकुलता का दुख,
हाँ जैसे की बराबर आकुलता, यानी कि एक कार्य पूरा नहीं होता है, जैसे कि अभी एक क्लास पूरी नहीं होगी और मन में ही चल रहा होगा इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, दिन भर का पूरा शेड्यूल मन में चलता रहता है, राइट?
बराबर,
राइट, हाँ बराबर। तो आप इसको दुख मानते हैं, यानी कि शेड्यूलिंग करना, ये दुख है तो शेड्यूलिंग क्यों करते हो आप, मत करो?
वो सहज से हो जाते
अच्छा, तो बड़े दुख को हटाने के लिए छोटा दुख हम झेल लेते हैं। और कोई दुख शेड्यूलिंग के अलावा?
एक्सपेक्टेशंस होती है ना कि अभी देखो वीरेंद्र जी नहीं मिले तो हम ढूंढ रहे थे कि हमें दुख लगा कि वो क्लास नहीं होगी, तो आपको लेके आए तो उसका भी दुख लगा कि आपके स्केड्यूल, मतलब हम लोग आशा रखते हैं दूसरे मतलब द्रव्य से कि उससे भी मुझे सुख होगा, वो भी नहीं होता, उससे भी दुख हो जाता है, और अपने आप से भी हो जाता है कि बराबर नहीं पढ़े सेशंस तो जवाब नहीं दे सकते, तो वो भी मतलब दुख दुख के बारे में ऐसा नहीं है कि दुख हो जाता है, लेकिन अंदर से वो भाव हो जाते हैं क्योंकि जो अनकंफर्टेबल लगते हैं।
बराबर, यानी कि दुख हमें हमेशा लगता है और हम इतना पता है कि हम दुखी हैं, राइट?
हाँ वो तो है, हाँ वो तो है,
सबको पता है कि हम सभी दुखी हैं, राइट?
हाँ वो तो है,
सबको विश्वास है कि हम दुखी हैं।
हाँ
हाँ, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप इस दुख को मिटाने के लिए क्या कर रहे हो क्लासेस लेने के अलावा? स्व सन्मुखता करनी चाहिए। हम इस दुख को हटाने के लिए क्या कर रहे हैं?
अभी तो कुछ नहीं कर रहे हैं, बस ऐसे ही सोच रहे हैं कि शास्त्र पढ़ने से थोड़ा टाइम सुख मिलेगा, या कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर रहे कि जिससे सच्चा सुख मिल रहा हो, वो सब
तो बताइए। फिर शास्त्र पढ़ना, रमुकार मंत्र पढ़ना, चार मंगल पढ़ना, तीर्थंकर भगवान को जानना, मंदिर में जाके देव दर्शन करना, फिर ये किस काम का रहेगा यदि हमें ये पता है कि हम दुखी हैं लेकिन हम उस दुख को दूर करने का उपाय नहीं करें? तो ये यानी कि हमारी सारी एक्टिविटीज पूरा राउंड लेकर जीरो पर ही आ जाती है, स्टार्टिंग पॉइंट पर ही।
वो तो है।
नहीं तो इस ये व्हाट आई एम ट्राइंग टू प्रूव इज कि ये क्या बताता है कि हमको ये तो पता है हम दुखी हैं लेकिन हमको भरोसा नहीं है कि हम दुखी हैं। यदि विश्वास होता है, जैसे कि अंदर खाना खाते के बाद कुछ अंदर दांत के बीच में कुछ फंस जाता है तो बार बार हमारी जीभ उसी के पास जाती है कि उसको निकालें, राइट? या फिर कुछ भी बॉडी में एक छोटा सा कुछ भी हो जाए तो जब तक वो सही नहीं हो जाए एकदम ट्रीटमेंट लेकर रखते हैं कि ये हो गया है तो उसको मिटाना है। क्यों? क्योंकि भरोसा है कि जो कुछ भी हुआ है वो अच्छा नहीं है, राइट? प्रैक्टिकल है ना, ये यही होता है ना हमारे साथ।
दुख का शरीर
और साथ में सुख की परिभाषा भी मालूम नहीं है ना, क्योंकि वो कभी लिया नहीं है तो मालूम ही नहीं है। चलो ये तो बात बराबर है संदीप पंचेंद्रीय, लेकिन तिरंज गति नाटी गति में भी सुख के बारे में मालूम ही नहीं है क्या सुख है, तो तब हम एक्सपेक्ट करते कि नारकी से छूटे हम।
वही हम लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग सिर्फ वर्तमान की दशा को बदलना चाहते हैं, प्रेजेंट सिचुएशन टल जाए बस, यहाँ पर ही हमारी थिंकिंग स्टॉप हो जाती है। हम ये नहीं सोचते कि आगे क्या होगा, आगे के भवों में क्या होगा। अभी तो हम पंचेंद्रिय संगी सब कुछ जानने वाले, दिवाली मिली, सच्चा मार्ग सामने दिख रहा है। अब अगले भव में क्या होगा किसको पता है, कहाँ जिनवाणी मिलेगी, क्या मिलेगा। तो हम आगे की नहीं सोचते, हम ये सोचते हैं चलो आज का स्वाध्याय हो गया, ये हो गया, वो हो गया। चलिए हम वापस क्वेश्चन पर आते हैं। देव दर्शन
ये बात को चालू रखे भाई अनुभव जी, ये बात को और डीप में लेके जाए, थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन अच्छा होता है उससे।
ओके फाइन, ठीक है। तो हम सभी दुखी है कि नहीं है?
दुखी तो है,
क्वेश्चन तो वही है कि तो है,
तो मान नहीं रहे कि हम दुखी हैं।
तो यही तो, जब तक दुख को दुखी नहीं माना तो फिर इसको कैसे बोले, कोई एक रोगी है उसको कैंसर है लेकिन उसको पता ही नहीं उसको कैंसर, वो मान ही नहीं रहा कैंसर है, तो उसका ट्रीटमेंट कभी करेगा
नहीं, करेगा
मानने की तैयार नहीं है तो क्यों करेगा ऐसी। और एक रोगी जो मजाक में कहता है मुझे कैंसर है, उसको मजाक लगता है, उसको बिलीव नहीं होता है, बस वो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कहता है मुझे कैंसर है, तो क्या वो उस मजाक को कभी रियलिटी समझेगा और करेगा? नहीं, बस बोलता रहेगा हाँ मुझे कैंसर है, उसके लिए तो एक फन हो गया। तो वो ही हमने बोल दिया हम दुखी हैं, आगे क्या, कुछ भी नहीं।
और एक चीज है, हम दुखी हैं मानते हैं फिर भी उसका करेक्ट जो सुखी होने का भी प्रयत्न नहीं करते, और जो करते हैं वो गलत करते हैं। हम लोग स्वाध्याय मीन्स पुण्य की क्रिया करते हैं और उसमें सुख मानते हैं, तो वो भी एक गलती
है। वही बराबर, हम लोगों ने ये मान लिया है कि भगवान के सुबह दर्शन हो गए, उनका स्मरण हो गया, दिन में दो बार स्वाध्याय हो गया, क्लासेस हो गई, बस इनफ। एक बार स्वाध्याय हो गया, आज की क्लास हो गई, अब धर्म के बारे में और कोई डिस्कशन नहीं, आज का कोटा पूरा। तो हमने ये मान लिया है कि जस्ट जिनवाणी सुनने से काम हो जाएगा। सी, जो भगवान का समव शरण लगता है उसमें 12 सभाएं होती हैं और उसमें इतने सारे हर जाति के जीव जाते हैं, तो वो सारे के सारे उसी टाइम भगवान बन जाते हैं?
नहीं।
अच्छा, तो सारे के सारे सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेते हैं?
नहीं।
जब तीर्थंकर देव साक्षात बैठे हैं, दिव्य ध्वनि दे रहे हैं उनकी साक्षात वाणी में स्वाध्याय तीर्थंकर के साथ करके जीव अपना काम नहीं कर पाते, तो हम अकेले एक घंटे किसी से भी कुछ जिनवाणी की दो बातें सुन लेंगे और समझेंगे हमारा काम हो गया, तो काम हो जाएगा क्या?
नहीं होगा।
यदि काम ऐसे हो रहा होता तो समव शरण में जितने जीव जाते वो सब समय दृष्टि होकर आने चाहिए, तो तीर्थंकर की वाणी सुनकर आते थे, राइट ना?
हम भी गए थे और वापस आ गए।
हम भी कितनी बार गए और हम भी वापस आ गए, बराबर है। और हम अभी क्या वापस वही चीज पढ़ रहे हैं, क्योंकि अब यदि एक साधारण व्यक्ति को आप जाके बोलोगे कि तुम तीर्थंकर की सभा में बैठ कर आए हो तो वो हंसेगा, बोलेगा क्या बात कर, कुछ याद भी नहीं है हमको हम गए थे। तो जो तीर्थंकर की वाणी सुनी तीन लोक के परमात्मा की, वो भी विस्मृत हो गई। उसके बाद न जाने कैसी गंदी गंदी गतियों में भी गए होंगे, और अब वापस भाग्य मिला तीर्थंकर की साक्षात दिव्य ध्वनि नहीं तो भी ज्ञानियों महाराज हमारे मुनिराजों के माध्यम से जो हमारी जिनवाणी सुनने को मिल रही है। अब यदि हमें वो सुनने को मिल रही है और उसको भी हमने ऐसे ही छोड़ दिया, तो फिर अब तो वापस रहने की, एक बार तीर्थंकर से छूट कर आए, अब दूसरा मौका मिला तो अब वापस उसे छोड़ देंगे, फिर पता नहीं कितने भवों बाद और कुछ मिलेगा। यानी कि हमको कभी इस पर लगता है, एक प्राउड महसूस होता है कि हाँ हम जैन कुल में जन्म लिया और हाँ हमको पता है कि सच्चा तत्व क्या है। कभी अच्छा लगता है कि हाँ हमको पता है कि सच्ची बात क्या है, कभी ऐसा अच्छा लगता है?
अभी तो डेफिनेटली लगता है, और समोवस्त्र में भी लगा था जब तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि सुन के आवे, तो तब भी ऐसे ही लगा कि यही करना है, तो भूल कहाँ हो गई।
तीर्थंकर देव का इतना पुण्य प्रताप होता है कि उनके समोवस्त्र में विद्रोही नहीं जाते हैं कभी, तो हमारे मन में उस समय भी भक्ति होगी जिन धर्म के प्रति, तीर्थंकर के प्रति, तभी हम उनकी दिव्य ध्वनि सुनने गए, लेकिन फिर भी कोरे के कोरे वापस आ गए।
हम वही बोलने वाले, गुरुदेव से बोलते हैं ना, कोरा नो कोरो रह गया।
वही तो, अब यानी कि जस्ट इमेजिन कि हम ऐसा तो नहीं कर रहे कि हम खुद ही को मूर्ख बना रहे हो, बुद्धू बना रहे हो कि चलो जिनवाणी एक घंटे पढ़ ली बस हम सुखी हो जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिनवाणी का स्वाध्याय करना वो सर्वज्ञ पद की गारंटी नहीं है किसी भी टाइप की। हमको ये सोचना पड़ेगा, बहुत अच्छी बात है कि हम जिनेंद्र देव की बात सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, और हमें लगा नहीं कि हाँ हम इस तत्व को सुने, लेकिन सुनने के बाद क्या करना है उसके बारे में भी तो सोचना पड़ेगा ना।
बराबर है,
वो नहीं तो सुनने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। इसलिए हम जो भगवान यदि कोई जिनेंद्र देव कहते हैं ना कि सम्यक दर्शन में देवशास्त्र गुरु निमित्त बनते हैं, तो गुरु की वाणी या तो साक्षात निमित्त बनते हैं। दो प्रकार के सम्यक दर्शन होते हैं, आपको पता है? आपको पता है दो प्रकार के सम्यक तो होते हैं, छहडाला में आया है, निसर्गज और अधिगमज, सुना है? देखिए क्या होता है, यदि आपको सम्यक तो लेना है तो या तो ज्ञानी यानी सम्यक दृष्टि या फिर गुरुओं की साक्षात आप वाणी सुनोगे, यानी कि आप मुनिराज आचार्य देव के पास गए, उन्होंने आपको उपदेश दिया तो आपको सम्यक होगा, या फिर आपने कभी किसी पूर्व जन्म में सुनी थी ज्ञानियों की देशना और आज आप ग्रंथ पढ़ रहे थे और आज आप कुछ चिंतन कर रहे थे और आपको वो अचानक से जाति स्मरण हुआ और वो देशना याद आ गई, तो सम्यक होता है। तो ये जिनेंद्र देव की वाणी सम्यक दर्शन में कारण क्यों बताई, यानी ज्ञानियों की वाणी क्यों बताई कारण?
जाति स्मरण होता है तो इसीलिए।
हाँ बराबर, लेकिन क्यों जरूरी क्यों है कि सम्यक दर्शन ज्ञानी की वाणी के कारण ही होगा?
क्योंकि उनकी वाणी से ही सच्ची बात जानने को मिलती है, बाकी तो कहीं से भी नहीं मिलेगी सच्ची बात, उससे ही पता चलता
है। जिनवाणी में भी तो सच्ची बात लिखी है, मैं जिनवाणी से पढ़ के जान लूँ तो मुझे क्यों नहीं होगा सम्यक दर्शन? सुनना क्यों बोला है ज्ञानी की देशना?
वहाँ पे एक लब्धि को हमें क्रॉस करना पड़ता है, पास करना पड़ता है उस लेवल तक पहुंचने के लिए, देशना लब्धि शायद, तो उसका होना बहुत जरूरी है।
हाँ मैं वही पूछ रहा हूँ कि ऐसी कंडीशन क्यों रखी, देशना लब्धि क्यों जरूरी क्यों है, एकदम करेक्ट है, हमें कृष्णा लब्धि पूरी करनी पड़ती है, बिना उसके समझ से नहीं हो पाए। बट ऐसा है क्यों, यानी कि यदि सिस्टम में ये है तो रीजन क्या है? सी जिनेंद्र देव का जो धर्म है वो एकदम प्रैक्टिकल है और एकदम थोरो है, एकदम वो स्ट्रिक्टली ये कहता है कि हम जो कहते हैं वो ऑथेंटिकेटेड होता है। आप इतने अलग अलग तरीके के देव हैं हमारे पास इस पूरे विश्व में, ओके, सब लोग कहते हैं हम सुखी हम सुखी हम सुखी हैं, लेकिन जैन धर्म क्या कहता है कि आपको भरोसा करना है कि हमारा मार्ग सही है, तो सिर्फ उनसे आपको भरोसा होगा जिन्होंने वो मार्ग खुद प्राप्त किया है, ज्ञानी लोग उन पर चल रहे हैं ना मार्ग को। तो जिसको ज्ञानी देव को जो साक्षात देखते हैं उनको ये पता पड़ता है, अहो जो जिनेंद्र देव ने बताया वो सच्चा है, ये देखो ये लोग तो सुखी है, ये लोग अपने आप को निहाल कर रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं मैं कर सकता। तो तब ये दृढ़ प्रतीति होती है कि हाँ ये मार्ग सच्चा है, और तब यथार्थ श्रद्धा होती है। जब तक आपको मार्ग में विश्वास नहीं है, जैसे कि हमको अभी सुख में विश्वास नहीं है, हमें ये पता है कि हम दुखी हैं लेकिन हमें विश्वास नहीं कि क्या हम सच्ची में दुखी हैं, उसी तरीके से जब तक हमें ये पता है कि हाँ भैया भक्त जिनेंद्र देव ने सच बोला है लेकिन उसका प्रूफ क्या है, तो जब साक्षात गुरु दिखते हैं जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के धारी होते हैं, सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, उनको देखते हैं, तब पता पड़ता है कि हाँ जिनेंद्र देव ने जो कहा वही सच्चा है, और तब अपने आप ही यथार्थ दृढ़ श्रद्धा हो जाती है। तो सबसे पहले तो ये विश्वास करिए कि जो जिनेंद्र देव ने कहा वो सच्चा है, फिर ये विश्वास करिए कि जिनेंद्र देव ने ये कहा कि संसार में दुख है तो हाँ दुख है, फिर ये विश्वास करिए कि आपको सुखी होना है, यदि हाँ तो फिर इस मार्ग पर आगे बढ़िए कि हाँ मार्ग ये है और मुझे ये करना है तभी मेरा कार्य होगा। मात्र ये जानना कि हाँ मार्ग ये है, वो सुखी होने का कोई उपाय नहीं, ज्ञान अकेली ज्ञान से कुछ भी नहीं होता, कोरा ज्ञान किसी काम का नहीं।
तो अभी भी कोरा ही ज्ञान है, क्योंकि हाँ हम शास्त्र सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, सब है, लेकिन अभी भी अपने स्वरूप के बारे में कुछ मालूम नहीं है, शब्दों से सुन के बढ़ सके, तो ये ज्ञान के संस्कार कैसे आगे आएंगे?
देखिए, और ऐसा भी नहीं समझिएगा अभी, नहीं तो कोई ये सोचकर बैठ जाए कि अरे देखो जिनवाणी पढ़ने से कुछ होना नहीं है, चलो छोड़ो ये भी नहीं पढ़ना, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है। देखिए, हम जिनवाणी पढ़ते हैं अभी वर्तमान में समझने की कोशिश करते हैं, इसके संस्कार हमारे साथ हमेशा रहते हैं, गहरे संस्कार जाते हैं। अत्यंत शुभ जाति के कर्मों का बंध हमको होता है, और इससे शायद हमको कुछ ऐसे अपूर्व कर्म बंध जाएं जिससे हमें भविष्य में किसी ज्ञानी मुनिराज या ज्ञानी जीवों का अथवा साक्षात तीर्थंकर देव का इनका समागम मिले। ये जो हमारे अभी के कार्य है ना, यही कार्य कर्म उस कर्म उस जाति के कर्म के बंधन में निमित्त होंगे कि हमको ज्ञानियों का समागम मिले। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए साथ में, कि हाँ मुझे मार्ग की सच्ची खोज तो हो, कि हाँ मुझे सही में किसी ज्ञानी को देखना है। हम कह देते हैं कि भी हमारे मुनिराज आज भी विद्यमान है, किसने ढूंढने की कोशिश करी मुनिराज कहाँ पर है, क्यों तीन कषाय चौकड़ी के अभाव वाले मुनिराज जो कि साक्षात यहाँ चल रहे हैं, हम इतनी मुनि भक्तियां गाते हैं लेकिन कभी हमने दर्शन करने का भाव ही नहीं किया, क्या कि भाव किया लेकिन सोचा चलो होंगे नहीं।
मतलब भाव तो किया है, भाव तो किया है, लेकिन जैसे शास्त्र में आए हैं कि अभी तो मिलेंगे ही नहीं, तो वो सुन के भी शांत हो गए कि चलो अभी तो नहीं मिलने वाले हैं।
नहीं, शास्त्रों में ये आया है कि वर्तमान में भी तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वी जो मुनिराज हैं सच्चे भाव में भी संत, वो अभी भी है।
यहाँ नहीं है ना, भरत क्षेत्र में नहीं है, दूसरे क्षेत्र में है, राइट?
नहीं, अभी भरत क्षेत्र में भी है।
भरत क्षेत्र में कैसे होंगे, क्योंकि मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग है तो पछी ये
ठीक है चलिए इसको एक साइड रखते हैं. मुनिराज है उनके दर्शन करने के भाव आते हैं बराबर है ठीक है. क्यों? क्योंकि हमें भी मुनिराज बनना है राइट राइट ना एकदम करेक्ट ना. अब मुनिराज बनने के लिए हम क्या करते हैं
कुछ
आई मीन ठीक है हम उसके लिए लाइक मुनिराज हमें पता है कि 28 गुणों के धारी होते हैं ये वो हम नहीं कर पाएंगे अभी यानी कि अपने ये सीधी साधी बात है कि हमारे दृढ़ता के हिसाब से होता है जितनी हमारी शक्ति हम उतना करेंगे
बराबर.
फिर भी हम उसके लिए जो थोड़ा हो हम उसके लिए क्या करते हैं आगे. अष्टानिका पर्व में पूजन कर लिया एकासना कर लिया और हम साफ खाना अन्न जल ये सब एकदम स्वच्छ ग्रहण करते हैं बस यहीं पर खत्म हो जाता है सब. मुनिराज सिर्फ आहार लेने पर और सामायिक इत्यादि करने पर ही रहते हैं मुनि भगवंत या हमारे समय दृष्टि परमात्मा समय दृष्टि जीव
नहीं
वो सिर्फ यही करते हैं क्या?
नहीं
तो हम हमारा यानी कि बस रात में नहीं खाना है साफ खाना है और अष्टानिका में ये करते हैं दशलक्षण पर्व अच्छे से बनाना है बाकी के दिनों का क्या. और बाकी के दिनों का तो ठीक है लेकिन दशलक्षण में बस खाने और पूजन के ही ध्यान देना है कि कुछ और भी करना
आत्मसाधना.
बहुत बढ़िया ये जो पर्व है हमारे त्रिकालिक पर्व ये पर्व संयम से रहने के तो है लेकिन संयम के लिए हमारे जो शास्त्रों में परिभाषा दी है कि ये पर्व में संयम यानी क्या. तो पर्व में संयम अर्थात ये जो हम करते हैं ना एकासना इत्यादि हम उपवास करते हैं फास्ट वगैरह कि हम कुछ भी नहीं खाएंगे तो ये सब क्यों करते हैं इसका रीजन क्या कि संयम उस लिए करना जिससे हम अपनी आत्मा की अच्छे से साधना कर पाए. संयम इसलिए नहीं करना कि आज मेरा एकासना है आज मेरा उपवास है आज मैं कुछ खाना नहीं खाऊंगा और दिन भर यही सोचते रहना कि आज कुछ नहीं खाना है आज कुछ नहीं खाना है और खुश होना कि मैंने एक एकासना किया आठ एकासने किए दस एकासने किए या दस उपवास किए इसके लिए नहीं है. ये जो अष्टानिका पर्व अभी आएंगे और जो दशलक्षण पर्व आते हैं और डेली का जो हम एक साधारण जैन श्रावक जो डेली का रूटीन फॉलो करता है कि रात में नहीं खाना इत्यादि इत्यादि ये सब किस चीज के लिए करते हैं
अपनी आत्मा के.
अच्छा आप सभी लोग हाँ
थोड़ा निवृत्त होकर हमें आत्मा के लिए समय मिले इसलिए हम लोग एकासन वगैरह
हाँ वही बराबर है लेकिन हम जब एकासना करते हैं तब हमें याद रहता है कि हमें एकासना करके क्या करना है.
नहीं
यानी कि वेरी टू बी वेरी प्रैक्टिकल ना एक्चुअल में क्या होता है ठीक है हमारे शास्त्रों में ये लिखा है कि एकासना इसलिए करना और इसलिए ये सब करना लेकिन प्रैक्टिकल में क्या हो रहा है हम कर क्या रहे हैं तो एकदम एक इसलिए जैसे हमारे एक जनरल प्रोसेस होता है हमारे यहाँ जब आचार्य लोग दीक्षा देते हैं ठीक है वो दीक्षा देने से पहले परीक्षा करते हैं जो दीक्षा मांगने आते हैं उनकी तो वो परीक्षा में क्या देखते होंगे हमारे आचार्य लोग किसको दीक्षा देनी कि नहीं देनी आपके हिसाब से क्या देखते होंगे.
हाँ वही
योग्यता है या नहीं है
योग्यता किस चीज की
भाव भाव
ग्रहण करने की
किस तब करनी की योग्यता यानी कि वो भूखे रह सके एक एक बार दिन में खाने मिलेगा इत्यादि ये वाली योग्यता
नहीं वैसे भी देखते
नहीं,
हैं.
आप कभी जैन धर्म की कहानियां पढ़िएगा जैन धर्म की कहानियां हमारे पुराण उसमें जब भी लिखा रहता है कि वो आचार्य श्री से दीक्षा मांगने जाता है कोई भी तो वहां लिखते हैं कि आचार्य देव ने उसको संसार से उदास जानकर दीक्षा के योग्य जानकर उसको दीक्षा दी. कभी ये चेक नहीं करते कि उसका पुरुषार्थ कितना है और वो कितने योग कर सकता है और कितना तप कर सकता है. वो ये देखते हैं कि संसार में संसार से सच में दुखी है इसलिए ले रहा है कि इसका और कुछ पर्पज है दीक्षा लेने का. तो वो ये चेक करते हैं कि हाँ ये सुखी होना चाहता है कि नहीं. इसी प्रकार पहले जिनवाणी पढ़ रहे हैं हम, तो हमको पहले ये सोचना है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, नॉर्मल अपनी जैनिज्म के ऊपर नॉलेज बढ़ाने के लिए या किसी दूसरे को पढ़ाने के लिए, कि नहीं मुझे सुखी हो रहा है इसलिए पढ़ रहे हैं, क्या हमारा बेसिक पहला प्रिंसिपल क्या है, हम क्यों आए हैं जिनवाणी पढ़ रहे हैं। यानी जिनवाणी पढ़ने से पहले ये कभी सोचा कि मैं आज ये शास्त्र पढ़ रहा हूँ और इससे मुझे क्या मिलेगा? सोचा कभी?
जो गुरुदेव श्री ने वाणी में बताया है वो व्याख्यान पढ़ के सुन के वैसे भाव पाषण होवे तो हमारी योग्यता बढ़ती है।
तो जो गुरुदेव श्री जो जो बताएंगे सिर्फ उससे योग्यता बढ़ेगी कि और किसी से भी बढ़ेगी?
जिनवाणी मार्ग से बढ़ेगी।
हाँ, यानी जो जिनवाणी ने प्रतिपादित किया उससे बढ़ेगी। और योग्यता किस चीज की बढ़ानी है आपको?
अपनी बढ़ानी,
आत्मलक्षी ससन्मुख।
हाँ, ससन्मुख क्यों होना है? वही किस चीज के लिए ससन्मुख होना है?
कि परद्रव्य से विमुक्त हो गए तो ही
परद्रव्य से विमुख होना है, ससन्मुख होना है, क्यों होना है?
सुख वही है और कहीं नहीं है, अपने आत्मा।
हाँ, क्योंकि हमें सुखी होना है, क्योंकि हमें सुखी होना है। हमारा बेसिक पर्पस स्वसन्मुख होना नहीं है, सुखी होना है। सुखी होने के लिए स्वसन्मुख होना ही एकमात्र उपाय है, इसलिए हम स्वसन्मुख होने के मार्ग पर जाते हैं। लेकिन आत्मा का स्वभाव सुखी होना है, तो हमारा जो मुख्य जो पर्पस है वो सिर्फ सुखी होना है। तो क्या हमारा लक्ष्य है कि हाँ मुझे सुखी होना है? क्या हमारे अंदर लगता है कि हाँ मुझे बहुत दुख है तो मुझे सुखी होना है? स्वसन्मुख होना वो मार्ग पर है, पर द्रव्य से दृष्टि हटाना वो सुखी कैसे हो वो वाला मार्ग है। लेकिन पहले ये तो निर्णय करो कि मुझे जाना कहाँ है। अब मुझे मुंबई जाना है कि मुझे US जाना है कि मुझे इंग्लैंड जाना है, कहाँ जाना है? तो पहले वो निर्णय तो करो, फिर हम देखेंगे कौन सी फ्लाइट लेनी है, किस टाइमिंग की लेनी है। तो जब तक यही डिसाइड नहीं है कि जाना कहाँ है, बाकी की बातें करना कोई मतलब का ही नहीं रहेगा ना, वो तो फिर जस्ट फॉर नॉलेज हो जाएगी।
बराबर।
तो पहले हम सभी ये डिसाइड करें कि हाँ हम दुखी हैं। यदि हर एक कार्य जो संसार का होता है वो हम करते हैं और उसमें यदि हमें लगता है कि हाँ मुझे इसमें आकुलता होती है, मुझे नहीं करना, मैं करने वाला हूँ ही नहीं, जब ऐसा लगे और पता पड़े कि हाँ इस संसार में सच में दुख है, तब अंदर में सच्ची सुख की प्राप्ति की सच्ची वाली जो इच्छा होगी कि हाँ मुझे दुख से छूटना है, ये जो एक लक्ष्य बनेगा, उसके बाद भी हम जिनवाणी का स्वाध्याय करेंगे तो शायद हमको कुछ फायदा हो। अदरवाइज जस्ट इसलिए पढ़ना कि ये रूटीन में है और अच्छा होता है, गुरुदेव श्री सम्यक दृष्टि थे तो उन्होंने अपना कार्य कर लिया तो उनकी वाणी सुनेंगे तो हमारा भी कार्य हो जाएगा, तो फिर ऐसे नहीं होगा। देखा देखी कार्य करने से कार्य कभी नहीं बनेगा, पहले हमें पता करना पड़ेगा कि हाँ इस कार्य से क्या होने वाला है, कि इस कार्य से हम सुखी होंगे, और तब हम सुखी होने के लिए भी अपनी कमर कसेंगे तो फिर कुछ कार्य होगा। सी हमारे आचार्य जो होते हैं वो 5 महाव्रत के धारी होते हैं, राइट?
हाँ।
कौन कौन से?
चौर्य और परिग्रह ब्रह्मचर्य।
बहुत बढ़िया, यानी कि हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, इन 5 पापों के अभाव में जो 5 गुण प्रकट होते हैं उनके वो महाव्रत होते हैं, यानी कि उनके पूरे हिंसा का त्याग है, पूरे सत्य पूरे असत्य का और चोरी इत्यादि सबका त्याग है। ठीक है, अब आचार्यों के मुनिराजों के साधु भगवंतों के सत्य महाव्रत है कि नहीं है?
है
ना?
है।
तो वो सच बोलेंगे कि झूठ बोलेंगे?
सत्य ही बोलेंगे।
सत्य ही बोलेंगे, ठीक है। अमृत चंद्र आचार्य देव समय सार जी जो ग्रंथ है कुंद आचार्य देव द्वारा रचे, उसमें लिखते हैं कि एक बार हे जीव तू 6 महीने अपने आत्मा के समीप रहकर तो देख। क्या बोला उन्होंने? 6 महीने आत्मा के समीप रहकर तो देख। और उन्होंने गारंटी दी कि यदि तेरा काम ना हो तो, यदि तेरे ये मोह राग द्वेष ना टूटे, ऐसा हो नहीं सकता। उन्होंने वहां पर गारंटी दी। तो अब ये बताइए, सत्य महाव्रत के धारी आचार्य हमसे झूठ बोलेंगे हमको जिन मार्ग में लगाने के लिए?
नहीं।
किसी ने ट्राई किया 6 महीने के लिए के कार्य होता है कि नहीं? मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, हम सभी अपनी बात कर रहे हैं। मैंने पहले ही बोला डिस्कशन है, कोई क्लास नहीं है। तो क्या हमें आचार्य अमृत चंद्र देव, कुंदकुंद आचार्य देव के शब्दों पर विश्वास है?
नहीं है।
यानी कि हमें इतना पता है कि हाँ हम दुखी हैं, हमें इतना पता है सुखी होना है। अब आचार्य खुद ही कह रहे हैं कि तुम 6 महीने सिर्फ अपने आत्मा के समीप तो आओ। समय काल ग्रंथ में ये वाली बात भी है।
अभी,
तो
अभी
ये एक कलश है समय काल ग्रंथ का। हाँ
बराबर है, श्रीमद जी ने भी बोला था ना ये कि फिर ना मिले तो
हाँ,
ले दोनों ने बोला।
हाँ ये, लेकिन ये आचार्य अमृत चंद्र देव के पूरे के पूरे ऐसे ही शब्द हैं समय सारची ग्रंथ के।
बराबर है, बराबर है।
तो अब वो आई डोंट थिंक के आचार्य देव, आचार्य अमृत चंद्र देव ऐसे ही बोलेंगे। उन्होंने भी रहकर देखा होगा और सच में ये कार्य होता होगा, तभी ऐसा हुआ, राइट? तो यदि जब हमें ये पता है कि हमें सुख चाहिए, हमें ये पता है दुख है, और हमें ये पता है कि मार्ग ये है, हमारे आचार्य देव डंके की चोट पर ये कहते हैं कि हाँ ये करने से तुम्हें अवश्य सुख प्राप्त होगा, और फिर भी हम नहीं करें, तो यानी कि टू बी वेरी फ्रेंक, या तो हम लोगों को संसार में बहुत अच्छा लगता है या फिर हम सुखी होना नहीं चाहते। बराबर है,
बराबर है।
तो क्या हम सुखी होना नहीं चाहते? तो ये बराबर है,
ये सुखी होना चाहते हैं वो तो,
लेकिन हम बिना कुछ करे सुखी होना चाहते हैं।
हाँ बिना कुछ करे संसार में रहते रहते सुखी होना चाहते हैं।
सी जैन धर्म ये तो कहता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, लेकिन यहाँ पर ये वाली बात थोड़ी कर, यहाँ पर कुछ करना नहीं है, बस अपने हित के लिए खुद पर ही स्वयं पर ही पुरुषार्थ करना है। तो यहाँ पर बिना कुछ करे तो कुछ नहीं होगा। चलिए हम अष्टानी का पर्व पर थोड़ा डिस्कशन करते हैं। हमारे जो भगवान है अरिहंत देव, वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं, और कुछ कुछ अरिहंत वो हितोपदेशी जिनकी दिव्य ध्वनि खिड़ती है समोशरण्य गंध कुटी, वो हितोपदेशी भी होते हैं। तो हम जनरल परिभाषा देते हैं वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। तो जो देवगण है ऊपर, उसमें से जो देवगण है वो तो एक वर्ष में 3 बार, सबसे पहले हम 3 लोग को समझते हैं, कहते हैं ना यहाँ पर वर्तमान में हम जहाँ रह रहे हैं ये 3 लोग है, इस पूरे संसार के इस लोक के 3 पार्ट है। एक ऊर्ध्व लोक जहाँ देव इत्यादि रहते हैं, सबसे ऊपर पिशला है, देन बीच में है मध्य लोक, और सबसे नीचे है अधोलोक जहाँ नारकी रहते हैं, ठीक है? आप सभी ने वो 3 लोग का नक्शा देखा है ना? देखा हूँ, हाँ ठीक है। तो ये 3 लोग होते हैं। आपका समय कब तक हो जाएगा टाइम? जब भी टाइम हो प्लीज बता दीजिएगा।
6 महीने का ना होगा, बाद में टाइम पूरा होगा।
अच्छा ठीक है, ठीक है। हाँ तो ये जो हाँ हम लोग 3 लोग का आपने नक्शा देखा है, राइट?
हाँ जी।
हाँ तो वो एक जैसे कि एक पुरुष को खड़ा कर दीजिए, उसकी गर्दन को हटा दीजिए, और उसके दोनों हाथ यदि आप उसके वेस्ट पर कमर पर रखेंगे तो जो शेप बनता है पैर जब हम दोनों साइड कर लेते हैं, उसको 3 लोग का नक्शा कहते हैं। अब इस नक्शे का ऐसा है कि ये हाइट में टोटल 14 राजू होता है, 14 राजू ऊपर होता है, और पीछे की साइड ये 7 राजू तक होता है. ओके, तो एक टोटल इसके डायमेंशन है. वो आपको जब 3 लोग का एक स्पेशल चैप्टर आगे के भाग में है उस पर आप लोगों को बताया जाएगा. तो ये 3 लोग है हमारा. इसमें सबसे ऊपर देव, मध्य में त्रिरंज गति के जीव, मनुष्य गति के जीव और देव गति के जीव, ये मध्य लोक में पाए जाते हैं. देव गति के कुछ व्यंतर जाति के देव इत्यादि पाए जाते हैं. और अधोलोक में नरक गति के जीव होते हैं और देव गति के वापस वो व्यंतर जाति आदि के देव पाए जाते हैं. अब ये 3 लोग, आप लोग को 6 द्रव्यों के नाम पता है?
हाँ.
6 द्रव्यों के नाम?
हाँ जी. जी जी.
कोई बताएगा 6 द्रव्यों के नाम? हाँ बताइए.
जीव अजीव, धर्म अधर्म,
जीव अजीव,
आकाश काल,
धर्म
अधर्म, अस्तिकाय,
जीव,
जीव और अजीव.
एक काम करिए,
जीव अजीव है क्या?
पुद्गल.
पुद्गल
हाँ. जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, ये 6 द्रव्य होते हैं. प्रतीक जी, आपको 6 द्रव्य के नाम पता है?
हाँ जी. हाँ
हाँ. कौन कौन से? जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य. जीव, आकाश और काल. आकाश द्रव्य कौन सा होता है? जो ऊपर हम स्काई देखते हैं वो, राइट?
नहीं,
जो हम आकाश ऊपर देखते हैं वो होता है, राइट?
नहीं, वो तो पुद्गल है.
नहीं होता है?
नहीं.
तो फिर ऊपर जो आकाश देखते हैं वो क्या चीज है?
पुद्गल.
ऊपर जो देखते हैं वो क्या चीज है फिर? पुद्गल है. कैसे? कैसे?
स्पर्श रस गंध वर्ण वाला जो भी है वो पुद्गल है.
वेरी गुड. ये वाला क्वेश्चन मैं जहाँ भी पूछता हूँ तो गलत बताता है. ठीक है, ऊपर जो आकाश दिखता है ये पुद्गल द्रव्य, क्योंकि इसका कलर पाया जाता है वर्ण, और वर्ण किसका है? पुद्गल का है. एक गुण. ठीक है, तो जीव यानी कि जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाए, हम सभी जो जानता है देखता है वो जीव है. पुद्गल जिसमें स्पर्श यानी कि टच, रस यानी कि टेस्ट, गंध यानी कि स्मेल और वर्ण यानी कि कलर पाया जाए, उसे क्या बोलते हैं? पुद्गल. धर्म यानी कि जो चलते हुए जीव और पुद्गल के, यानी जो मोशन होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो इसमें जो निमित्त होता है उसको हम बोलते हैं धर्म द्रव्य. और ये जो चलने से रुकना, यानी चलते हुए जीव और पुद्गल के रुकने में जो निमित्त बने उसे बोलते हैं अधर्म. धर्म यानी जो चलाए, यानी कि जो चलने में निमित्त हो, धक्का नहीं देता है वो, बट वो हमारे चलने में निमित्त होता है. और अधर्म जो उनके चलते हुए जीव और पुद्गल के रुकने में निमित्त हो. आकाश जो कि सभी को अवगाहना दे, और काल द्रव्य होता है जो सबके परिणमन में निमित्त होता है. ठीक है, ये 6 द्रव्य हैं. इन 6 द्रव्यों का समूह जो होता है उसे विश्व कहते हैं, यानी लोक. लोक किसे कहते हैं? जिसमें 6 द्रव्य पाए जाते हैं उसे लोक कहते हैं. ठीक है, तो ये हमारे 3 लोक हैं. 3 लोक यानी कि एक लोक है, उसके 3 पार्ट हमने किए हैं समझने के लिए, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक. ठीक है, जो आकाश द्रव्य है, ये आकाश कितने होते हैं किसी को पता है? जीव कितने होते हैं?
जीव अनंतानंद.
जीव द्रव्य कितने होते हैं? जीव अनंतानंद. और पुद्गल?
पुद्गल अनंत.
जीव अनंत होते हैं.
जीव अनंतानंद और पुद्गल अनंत. उल्टा होता है, जीव अनंत और पुद्गल अनंतानंद. ठीक है, तो जीव द्रव्य अनंत होते हैं, पुद्गल अनंत. जस्ट एकदम प्रैक्टिकल, आप अपनी बॉडी को देखेंगे तो बॉडी में इतने सारे पुद्गल परमाणु है. एक पुद्गल परमाणु वो होता है जो दिखता भी नहीं है. आप एक हो और आपकी बॉडी में अनंतानंद पुद्गल परमाणु यानी पुद्गल द्रव्य है, राइट? तो एक आत्मा के साथ इतने सारे पुद्गल द्रव्य, तो इसलिए ऑब्वियसली इतने सारे जीव होंगे, उनसे ज्यादा ही होंगे पुद्गल. तो जीव अनंत है और पुद्गल अनंतानंद है. कितने होते हैं?
अनंतानंद.
धर्म अनंतानंद.
धर्म एक, अधर्म एक.
धर्म एक कौन कौन सा? जैन धर्म और हिंदू, क्रिश्चियन, कौन कौन से धर्म?
नहीं, मोशन की बात है ना. धर्मास्तिकाय.
अच्छा, ओके.
धर्मास्तिकाय.
ओके, धर्मास्तिकाय द्रव्य एक होता है जो सभी के जीव और पुद्गल के चलने में निमित्त होता है. और अधर्म वो भी एक होता है. आकाश कितने होते हैं?
एक.
एक
आकाश एक होता है पक्का
पक्का
एब्सोल्युटली
कौन सा एक
लोकाकाश और अलोकाकाश मिलके ही आकाश एक होता है
अच्छा तो लोकाकाश अलोकाकाश अलग अलग चीज नहीं है
नहीं
जिसमें लोकाकाश किसे कहते हैं
जिसमें लोग द्रव्य रहते हैं जो लोक है उसको लोकाकाश और जिसमें नहीं है
छह द्रव्यों का समूह उसको लोक कहते हैं वही लोकाकाश है और अलोकाकाश जिसमें कोई द्रव्य नहीं रहता अकेली एक ही द्रव्य रहता है आकाश तो अलोकाकाश कहते हैं राइट तो दो हो गए ना आकाश आकाश द्रव्य एक ही होता है और उसके बीच में एक पार्ट है जिसमें छह द्रव्य पाए जाते हैं तो वो थोड़ा तो हमने समझने के लिए उसको लोकाकाश बोल दिया लेकिन आकाश के अलग अलग दो भेद हो टाइप हो ऐसा नहीं है आकाश एक ही होता है ठीक है तो ये जो लोकाकाश है ये पूरे आकाश के एकदम सेंटर में है और जिस आकार का आप लोग देखते हो ना वैसे आकार का 3D में यानी कि 14 राजू ऊपर और 7 राजू पीछे तक दिया हुआ है तो टोटल ऐसा ये लोकाकाश एकदम बीच में है ठीक है और इसके अंदर बाकी के 5 द्रव्य पाए जाते हैं आकाश को मिलाकर टोटल 6 द्रव्य अब इसमें ऊपर जो है वो है देवलोक रहते हैं जो बीच में है वो मनुष्य और त्रियंश और देव और जो नीचे है वहाँ नारकी लोग रहते हैं और कुछ देव रहते हैं ठीक है नाउ अभी क्या होता है कि जैसे जैसे एक साल एक वर्ष होता है हमारे कुछ यहाँ पर त्रैकालिक पर्व है यानी कि हमेशा पर्व मनाए जाते हैं जैसे कि दिवाली है तो दिवाली तो अभी अभी लाइक महावीर भगवान का केवल ज्ञान हुआ और मोक्ष हो गया इत्यादि इत्यादि कारण हम दिवाली मनाते हैं तो लेकिन महावीर भगवान हर बार थोड़ी होते हैं इसी बार हुए तो ये ओकेजनल पर्व है दिवाली जो आएगी लेकिन जैसे दशलक्षण धर्म है ये हमेशा मनाए जाते हैं अष्टमी चतुर्दशी ये सारी चीजें ये हमारे हमेशा के पर्व हैं ये क्यों मनाते हैं देखिए इन पर्व के दिन यदि हम अच्छे काम करते हैं धर्म करते हैं संयम करते हैं तो हमें विशेष पुण्य का बंध होता है लाइक जैसे आज एक नॉर्मल दिन है आज हम पूजन करेंगे या फिर पाप करेंगे तो आज हमें नॉर्मल कर्मों का बंध होगा लेकिन यदि आज पर्व का दिन हो अष्टमी चतुर्दशी अष्टानिका या दशलक्षण पर्व तो यदि आज हम संयम से रहेंगे या फिर हम पाप करेंगे तो इन दोनों का तीव्र बंध होता है यदि पाप करोगे तो तीव्र पाप का बंध होगा और पुण्य करोगे तो तीव्र पुण्य का बंध होगा ऐसी कर्म की व्यवस्था है इसलिए कहा जाता है कि इन धर्मों के दिनों में हमको संयम से रहना चाहिए इसका रीजन क्या है हेलो
हेलो यस एक क्वेश्चन होता है कि इसी दिनों को क्यों चुना गया है इसी दिनों में क्या
हाँ 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 दो मिनट हाँ 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 इसको एक उसका नाम याद है एक ग्रंथ है हमारा उसमें ये सेम प्रश्न उठाया गया कि ये अष्टानिका अष्टमी चतुर्दशी इन दिनों पर ऐसा क्यों कि अधिक पाप का बंध होता है और अधिक पुण्य का बंध होता है ऐसा क्यों इन्हीं को पर्व क्यों कहा गया तो जैसे कि आप आम को ले लिए एक मैंगो होता है आम ओके तो वो समर सीजन में क्यों होता है विंटर में क्यों नहीं होता है
गर्मी में पकता
ऐसी व्यवस्था है
क्यों होता है नहीं तो लॉजिक क्या है उसके पीछे
वो गर्मी में ही होता है गर्मी में ही पकता है
हाँ यानी कि ऐसा ही नेचर है उसी तरीके से देखिए कार्मिक बॉन्डेज यानी कर्म को कोई गाइड तो नहीं करता है कर्म खुद ही पुद्गल के जिस प्रकार जो फल इत्यादि होते हैं वो अपने खुद के सीजन में होते हैं तो उसी सीजन में वो पकते हैं यदि आप विंटर में उसको आप आम को करना चाहोगे तो आपको फिर कोल्ड स्टोरेज वगैरह में जाके उसको स्पेशल थेरेपी से करना पड़ेगा उसी प्रकार जनरली नहीं होते नेचर नहीं है उसी प्रकार इन दिनों में आप जो भी कार्य करते हो उसका विशेष कर्म बंध होता है इसके लिए हमारे ज्ञानी जो भगवान थे हमारे भगवान की दिव्य ध्वनि में आया कि इन दिनों यदि आप पाप करोगे तो वैसे ही आपको तीव्र पाप का बंध होना है तो क्यों ना हम इन दिनों में संयम से रहें, जिससे हमें कुछ अच्छा बंद हो। यदि हम पाप करेंगे तो और तीव्र पाप का बंद होगा। इसीलिए इनको हम लोग पर्व के जैसे बनाते हैं, जिससे हम तीव्र पाप बंद से बच जावें और उसी बहाने हम अपनी आत्मा के समीप आ सके, हम संयम से रह सके। लॉजिक क्लियर हुआ ना? वो यानी वो नेचुरल है, कार्मिक उनका निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि इन दिनों में, कुछ दिनों में वो स्वयं भी इतना तीव्र जाति से बंधते हैं। तो अब जब बंधना ही है तो हम अपना अहित क्यों करें? अब बुरे कर्म बंधे, अच्छे कर्म बंधे, कर्म तो बंध रहे हैं आप, यदि ऐसा कहो तो बंधना तो बुरा ही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। यदि आपको अच्छे कर्म बंध रहे हैं तो आपको ये मौका है कि शायद आप भविष्य में तीर्थंकर देव या ज्ञानियों के समीप जाकर उनकी वाणी सुन सको। लेकिन आपके यदि गंदे कर्म बंधे तो आप कहीं नरक में रहोगे या किसी ऐसी गति में जहाँ ज्ञान भी नहीं रहेगा। तो इसके लिए ये जो बंध है, जब बंध होना ही है तो क्यों ना हम संयम से रहें और निर्बंध होने की साधना इन दिनों पर करें, इंस्टेड हम पाप बंध पर लगें। इसके लिए हम इनको पर्व बनाते हैं, त्योहार के रूप में मनाते हैं और ये लोग शाश्वत पर्व कहलाते हैं। क्लियर है?
हाँ।
किसी को कोई डाउट अभी इस पर?
नहीं।
ओके। तो दो तरीके के पर्व होते हैं, एक तो जो ओकेशनल होते हैं उनको तात्कालिक पर्व कहते हैं, जैसे जैसे जिस टाइम, जैसे अभी महावीर भगवान को मोक्ष हुआ है तो इसी 24वीं में होगा, तो जब अगली 24वीं आएगी तो लोग महावीर जयंती नहीं बनाएंगे फिर, राइट? तब लोग कुछ भी नहीं करेंगे वैसा, वो जब वो जो भी भगवान होंगे उनको मनाएंगे। तो एक तो ये वाला पर्व हुआ, और दूसरा जो त्रैकालिक पर्व यानी कि यूनिवर्सल है, हमेशा रहेंगे वो बहुत सारी 24वीं, पहले भी अष्टानिका, दशलक्षण धर्म, अष्टमी, चतुर्दशी, ये सब पर्व मनाए जाते थे, आज भी मनाए जा रहे हैं और आगे भी मनाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें कर्म का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसलिए हमारे हितकारी आचार्य देवों ने ऐसा उपदेश दिया कि हमें इनको संयम से रहना चाहिए। ओके ओके। तो हमारे जो ऊर्ध्व लोक में देवलोक हैं, वो लोग इन 8 पावन दिनों में, अष्टानिका पर्व में, इन 8 दिनों में नंदीश्वर द्वीप जाते हैं। अब देखिए, हम भगवान के मंदिर में जाते हैं डेली, ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ता है? पंच कल्याणक करना पड़ता है, मूर्ति की प्रतिष्ठा करनी पड़ती है, राइट? लेकिन क्या होगा कि जस्ट आप सोचो कि अभी छठवा काल आने वाला होगा और पूरा प्रलय आ गया और ये सब हो गया, उस समय हमारे कोई जिन मंदिर नहीं रहेंगे, जिनेन्द्र देव के नहीं रहेंगे ना, हमने जो बनाए वो सब मंदिर सब खत्म हो जाएंगे, राइट? तो फिर जिनेन्द्र देव के प्रतिबिंब, जिनेन्द्र देव के पूजन के लिए इत्यादि, जो देवलोक होते हैं, देवलोक भी तो यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो क्या जिनेन्द्र देव के मंदिरों का ही अस्तित्व खत्म हो जाएगा?
नहीं,
ये प्रलय के बाद, कि फिर जब अगली बार वापस मनुष्य आएंगे फिर वो मंदिर बनाएंगे, तब तक देवलोकों को वेट करना पड़ेगा, तब तक वो दर्शन नहीं कर सकते,
वो नंदीश्वर देव में जाके वो शाश्वत रहते हैं, हमेशा रहते हैं।
हाँ, तो नंदीश्वर द्वीप नहीं, यहाँ पर तीन लोक में बहुत सारे अकृत्रिम जिन चैत्यालय हैं। अकृत्रिम यानी कि उनको किसी ने बनाया नहीं है, वहां पर हमारे जिनेन्द्र देव की प्रतिमा जो कि अकृत्रिम है, वो 500 योजन के उनका पूरा डायमेंशन है, उनके एकदम सुंदर प्रतिमा और पूरी अकृत्रिम है। अकृत्रिम है तो जैसे हमारे भगवान ओरिजिनल दिखते हैं, उनके लाइक आँखों का और जो होंठ होते हैं इत्यादि, तो जैसी बॉडी दिखती है वैसे ही कलर की, एकदम सुंदर और ऐसा लगे जैसे कि वो हमारे भगवान ही साक्षात सामने बैठे हैं, ऐसी सुंदर प्रतिमाएं इन अकृत्रिम जिन चैत्यालयों में होती है। तो देव लोग इन पावन दिनों को मनाने के लिए 8 दीप, 8वां दीप जो है नंदीश्वर दीप जाते हैं। आप लोगों का टाइम हो गया हो तो प्लीज बता दीजिएगा, हम लोग अब दीप पर थोड़ी चर्चा करते हैं। हाँ
नहीं नहीं, एक मिनट अनुभव जी, आपको आपका भी देखना है क्योंकि आपकी एग्जाम के टाइम पे,
मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग का जब भी आप बता दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अच्छा,
लेकिन आप लोग हाफ एन आवर पहले भी डिले हो गए हैं, इसलिए मैं बोल रहा था।
हाँ और अभी है ना जयपुर से संजय जी सेठी जो शास्त्री है और भाभी ज्योति भाभी ज्वाइंट हुए कॉन्फ्रेंस में.
ओके फाइन. तो वो कंटिन्यू करें क्लास में तो अच्छा लगेगा.
और अनुभव जी आप अगली बार भी ले सके तो चलेगा क्योंकि ऐसे भी एक घंटा हो गया है. हाँ,
हाँ वही मैं बोल रहा हूँ. आज के विषय को कंक्लूड करते हैं.
हाँ क्योंकि आज इतना तो नहीं खत्म होगा अपना. और
हाँ वही 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 बराबर है बराबर है. ठीक है तो अभी इसको कंक्लूड करते हैं. ओके तो हमने जस्ट आज यही सीखा कि हम यदि सच्चा सुख चाहते हैं तो हमें कुछ करना पड़ेगा क्योंकि सुख की प्राप्ति मात्र जिनवाणी के स्वाध्याय करने से नहीं होती है. अंदर से सुख प्राप्त करने का यानी कि हमें ये भाषित हो विश्वास हो कि हाँ दुख है इस संसार में. इसके लिए मैं जिनेंद्र देव के समीप आया हूँ. इसलिए मैं जिनेंद्र देव के उपकार को मानते हुए उन्होंने जो हमें ज्ञान दिया है हम सभी उसको समझें और अपना हित करें सम्यक दर्शन की प्राप्ति करें. इसी मंगल भावना के साथ आज कंक्लूड करते हैं.
बहुत बहुत बढ़िया रहा संजय अनुभव जी. हमको ऐसी बात से हम जो सब्जेक्ट हमारा अधूरा रहा है वो कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीक अगर हो सके तो ज्यादा जानने की कोशिश करेंगे. तो फिर इसी के साथ हम जिनवाणी मैंने आप सबको हाँ ईमेल भेज दिया है. हम जिनवाणी स्थिति कहाँ से करेंगे कि अगर आपके सामने हो तो हम कंटिन्यू करें जिनवाणी स्थिति को. अमीशा
हाँ जी
सभी के सभी के पास है राइट
जिनवाणी स्थिति जो बालबोध भाग दो में है.
हाँ भाग दो में है
पेज नंबर 35. तो सब लोग साथ में हम बोलेंगे जिनवाणी स्थिति.
हाँ
हाँ हाँ बिल्कुल. ज्ञान
ज्ञान के प्रकाश
वेको
भानु सी बखानी है.
छह द्रव्य
ज्ञान वेको बंद भी दीवान
वेको
पर
ज्ञान वेको परम प्रमाणी है.
अनुभव
जताय वेको जीव के जताय वेको काहू न सताय वेको
भव्य पूरा जहाँ तहा
तार वेको पार के उतार वेको
सुख
दे कार वेको
जिनवाणी
है.
जिनवाणी
भारती तो ही जपो दिन रहे
जो तेरी
कहे
पावे
सुख चैन.
जिनेंद्र
हाँ एक रिक्वेस्ट बदाने जय जिनेंद्र.